एक सवाल इन्होंने पूछा है कि शादी की तकरीब में दुल्हन अपने हिजाब की हिफाजत कैसे करे। सबसे आसान तरीका है कि अपने पास किसी मौलाना को बिठा ले, इसलिए कि पूरी कायनात में सिर्फ मौलाना ही होते हैं जो न महरम होते हैं, बाकी तो सारे ही महरम होते हैं। बगैर हिजाब के घूम फिर रही होंगी, बैठी हुई होंगी, मेकअप भी चल रहा होगा, मेहंदी भी लगी हुई होगी, सारे कजन वजन अला बला सब आ जा रहे होंगे। उधर मौलाना साहब इजाजत लेने के लिए आते हैं, उधर सारी चादरें ऊपर उसके आ जाती हैं। तो सबसे आसान तरीका यह है कि दुल्हन की बगल में एक मौलाना को बिठा दें, तो उसका हिजाब महफूज रहेगा। दीन तो मौलाना महफूज करते ही हैं, हिजाब भी महफूज कर देंगे। और बाकी तो देखें, अब ये चीज़ तो ऐसी है कि बिलाखिर ये तो हर शख्स की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि अपने वाजिबात की पाबंदी करे। अब मेहंदी लगी हुई हो, मेकअप लगा हुआ हो, लिबास खुद एक जीनत वाला लिबास हो। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर आप इस्तफ्तात देखें, आगा खुई के इस्तफ्तात में भी ये बात मौजूद है, आगे तबरीजी के इस्तफ्तात में भी ये बात मौजूद थी, आगे सिस्तानी के इस्तफ्तात में भी ये बात मौजूद है कि अगर किसी खातून ने, अब ये शायद आप लोगों के लिए भी बात के लिए हो, अगर किसी खातून का स्काफ अट्रैक्टिव है, आपने देखा होगा मोती लगे हुए होते हैं, या कलर उसका ऐसा है कि मतलब चीखता हुआ रंग है बिलाखिर, तो वो खुद स्काफ छुपाना भी वाजिब है। यानी आपने हिजाब के लिए स्काफ लिया और स्काफ को हिजाब कराएं, तो एक इसके ऊपर और कोई चीज डालें, ये वाजिब है, ये उन्होंने कहा है वहां इस्तफ्तात में। तो बहरहाल असल तो जिम्मेदारी यही है कि अगर इसने इतना कुछ, दुल्हन बनी हुई है, जारी बात है दुल्हन बनी हुई है तो मेकअप भी होगा, मेहंदी भी होगी, लिबास भी उसका जो है वो जीनत वाला होगा, तो इसकी जिम्मेदारी है कि इस अपने ऊपर कोई सिंपल सी शादी सी, अब शादी का मौका है, बहुत से लोग काले रंग से हसास होते हैं कि काला ना ओढ़े, तो कम से कम एक सफ़ेद चादर या एक वो जो प्रिंटेड जो इस टाइप की चादरें वादरें होती हैं, कोई ना कोई चादर मिलाकर उसके ऊपर होनी चाहिए कि जो इसकी इन तमाम चीज़ों को कवर करे, जो इसकी इन तमाम चीज़ों को कवर करे, ये होनी चाहिए, हतमन होनी चाहिए। दुल्हन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप खुदा से बगावत करें, बल्कि ये महफिल तो इंतहाई बाबरकत महफिल होती है, शादी की महफिल, निकाह की महफिल वो महफिल होती है जो दुआओं की कबूलियत की महफिल है। उसी में अगर हम बेहूदगियाँ करें और हराम काम करें, तो सारी बरकतें और सारी रहमतें तो हमने खुद ही उड़ा दी। इब्तदा में ही हमने बुनियाद जो डाली है उस महफिल की, बजाय इसके कि वो बरकतों और रहमतों की महफिल बने, हमने उसको शैतनत की महफिल बना दिया, और रहमत के फरिश्तों की छुट्टी करवा के शयातीन को वहां पे विराजमान कर दिया, और फिर हम तवक्को रखते हैं कि जी ये खुशगवार जिंदगियां गुजरें और अच्छी जिंदगियां गुजरें, तो कैसे गुजरेंगी। बुनियादें तो हम खुद, जिसको कहते हैं ना पैर पे कुल्हाड़ी मारना, पैर पे तो हम अपने खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर कोई कहता है जी किसी ने जादू करा दिया, तो किसी ने कोई सहर हो गया, तो किसी ने कोई काला इल्म कर दिया, तो किसी ने कोई नीला इल्म कर दिया, तो किसी ने कोई पीला इल्म कर दिया, फिर सारे नीले पीले लाल गुलाबी उलूम याद आ जाते हैं सबको। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक हदीस में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, मौला अपनी हदीस में फरमाते हैं कि अगर किसी के बदन पर एक खराश भी आती है, तो बिमा कसबत ऐदिन्नास, तुम्हारी अपनी कमाई हुई है, तुम्हारी अपनी कमाई हुई है। मौला ने कहा कि अगर किसी को खराश भी आ रही है तो वो सोचे किसने किसी के ऊपर क्या किया है। ये करना कराना मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, हैं ये चीजें हमारे माशरे में, और शरीयत ने इन चीजों को हराम भी करार दिया है, हैं भी, लेकिन आप ये कहें कि हर मुसीबत किसी ने कुछ कराया है तभी आई है, ये ऐसा नहीं है। बल्कि उसूली तौर पे जो रिवायतों से मेरी समझ में आता है वो ये आता है कि पहले तो आप जब जब भी कोई मुश्किल मुसीबत परेशानी आए, तो पहले आप अपने आप को कम से कम एक दफा चेक करें, आप देखें तो सही कि आपसे क्या गलती हुई है। अमीरुल मोमिनीन की इसी रिवायत की रोशनी में पहले आप देखें तो सही कि आपने जैसी करनी वैसी भरनी। हम दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं, हम पर कोई जुल्म करे तो हम कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया, ये किसी ने कुछ नहीं किया, आपने खुद अपने ऊपर कुछ किया है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये रिएक्शन है जो आपके एक्शन का है, जो आपने किसी और के हक में जुल्म किया है। यानी रिवायतें ऐसी तो नहीं है, आयमा ने ऐसी तो नहीं बयान की ये बातें, और ये वाकयात हैं। यानी मैं तो इतने इस खास तौर पे जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ ईरान से, और ये कहानियां जो लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है और लोगों के आना जाना और मसले मसाइल और कहानियां, आप देखें कितने वाकयात आपको मिलेंगे कि इस वक्त जो है लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह इनकी पिछली जिंदगी है। कि जब ये हुक्मरान थी अपनी घर की तो इन्होंने अपने छोटों के ऊपर जुल्म किया, इन्होंने नहीं सोचा कि हम आज किसी के ऊपर गलत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो कल को हमारे ऊपर भी या हमारी औलाद के ऊपर भी वो चीज रिवाउंड हो सकती है। लिहाजा इस महफिल को, जो वाकई बरकतों वाली महफिल है, दुआ की कबूलियत वाली महफिल है, निकाह की महफिल, उसको खराब ना करें, उसकी बरकतों को खराब ना करें, उसकी रहमतों को खराब ना करें। हम लोग कहते हैं, यानी देखें जो एक मिनट में, हम लोग कहते हैं कि बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, कहते सुना होगा, यार एक ही दिन तो आना होता है जिंदगी में। अव्वल तो ये कि ये तो हालात, ये एक ही दिन आना होती, कौन से दलील बन गई इस बात की कि एक ही दिन आने, तो आप जो बेहूदगियां करनी है करें। दीन और इस्लाम की छुट्टी है उस दिन, अल्लाह ने आंखें बंद कर ली हैं, रसूल और आयमा ने आंखें बंद कर ली हैं, ये कौन सी दलील हुई? और सानियन इसको उल्टा होना चाहिए था, यानी हम जिन चीजों की सपोर्ट में कहते हैं कि एक ही दिन तो आना है, हमें तो बरअक्स करना, एक ही दिन तो इतना बाबरकत आना है हमारी जिंदगी में, तो उसकी बरकतों को हासिल करना चाहिए या उसको शैतानी दिन बना देना चाहिए? हम शैतानी कामों के लिए इस बात को दलील लेकर आते हैं, जी गाने बज रहे हैं, एक ही दिन तो आना है शादी का, एक ही दफा तो शादी होनी है। वैसे मर्दों को कहा किसने कि एक ही दफा करें, ये तो उनकी बेवकूफी है जो एक ही दफा पर इक्तफा करते हैं। खुद कुरान कहते हैं मसना औ सुलास औ रुबा। मुझे एक जुमला याद आ गया, एक जुमला याद आ गया, मरहूम ज़िशान हज़रत जवादी साहब, अगर आपने नाम कभी सुना हो, बहुत प्यारी शख्सियत थे और बहुत अच्छी मजलिसें पढ़ा करते थे। नेट पर होंगी, सुनिएगा कभी, अगर आपको मजा आएगा, अगर आवाज साफ हो तो। अलबत्त वो ये कहा करते थे इस आयत के जिम्मे में कि खुदा तो कहता है कि दो शुरू ही दो से करता है। कुरान की आयत को आप उठा के देखें, मसना ओ सलास और रुबा, दो या तीन या चार। व इन कुंतुम ला तअदलू, वो इस तरह माना किया करते हैं, अगर इतने ही नालायक हो जाओ कि अदल ना कर सको तो एक करो। तो बकौल उनके, एक तो नालायकों का काम है, ये और बात है, हम सभी नालायक हैं। इस माशरे की एक बड़ी तादाद जो है वो नालायकों पर मबनी है। कहने का मकसद यह कि ये कोई दलील नहीं बनी कि जी एक ही दिन तो आना है। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं ना, एक ही दिन तो आना है, कि हम उसको इतना महफूज कर दें कि इसकी बरकतें और इसकी रहमतें इतने इनको महफूज करें कि ये हमारी आइंदा सारी जिंदगी के लिए काफी हो जाए। हम उस तरफ नहीं सोचते कि ये एक ही दिन आना है, इतना कीमती दिन, इतना अहम दिन, इतना बरकतों और इतना रहमतों वाला दिन। गुनाहों के लिए सोचते हैं एक ही दिन तो ना, चलो चलेगा, खैर गाने भी चल रहे हैं, मिक्स गैदरिंग भी चल रही है, बेहूदगियां भी चल रही हैं, हर अला बला जो गंद वाला नहीं होता हमारी शादियों में वो सब चल रहा है। बहरहाल देखें, वो तो आपने फैसला करना है ना कि आपने बंदों की नाराजगी मोल लेनी है या खुदा की लेनी है, तो आपने फैसला करना है, तो मैं थोड़ी फैसला करूंगा। देखें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि रिवायत का जुमला ये है कि ला, अब जो अल्फाज अगर ऊपर नीचे ना हो जाएं, तो ला ताअता फी मासियत, ला ताअतिल मखलूक फी मासियतिल खालिक, खालिक की मासियत में मखलूक की इताअत नहीं होती, हत्ता ये मखलूक आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। खुदा ने जहाँ वालदेन की इताअत का और वालदेन के एहसानात का और उनके साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है, वहां पर यह शर्त लगाई है कि उस वक्त तक के जब तक ये तुम्हें गुनाह के रास्ते पर ना ले जाएं। इसका मतलब क्या है कि अगर वालदेन भी इंसान को गुना का हुक्म देते हैं तो वालदेन उससे बढ़कर और कौन है? मगर सास ससुर क्या वालदेन बन सकते हैं? ये तो जो शादीशुदा कहते हैं वो तो सास को उल्टा लिखे या सीधे, वो रहती सास ही है, तो वो मां तो नहीं बन सकती ना, नहीं बन सकती। जब वालदेन जैसी हस्तियां कि जिनको ला तकुल्लहुमा उफ्फिन, उफ कहने की शरीयत इजाजत नहीं देती, कहती है उनकी भी क्या कहते हैं इताअत इस मोरिद में नहीं है कि अगर वो खुदा के मुकाबले में ले आए तो। बाकी तो सारे मादूनल वालदेन ही है ना, कमतर ही है ना वालदेन से, वालदेन से कि जितना किसी और का कोई हक नहीं है। तो जब खुदा माँ बाप की इताअत साकित कर देता है उस मोरिद में कि जहां पर खुदा की मासियत हो रही हो, तो बाकी तो सारे उससे कमतर हैं, कोई और उस सफ में नहीं खड़ा हो सकता कि जिस सफ में माँ बाप खड़े हैं। जब माँ बाप की इताअत साकित है तो दूसरों की तो बतरीके आला साकित है। मगर ये कि एक सिर्फ सूरत आती है कि अगर ये मुश्किल खड़ी हो जाए, मतलब फर्ज करें अगर ये हिजाब ना उतारती तो हरज में मुब्तला हो जाती। हरज यानी समझे नाकाबले बर्दाश्त जहमत व मुशक्कत। सिर्फ हरज है जो आके हुक्म शरीयत को बदलता है, कुरान की आयत है, और हरज है जो आके हुक्म शरीयत को बदलता है, वरना अगर हरज ना हो, हरज यानी नाकाबले बर्दाश्त जहमत व मुशक्कत, अगर हरज ना हो तो फिर दीन नहीं बदलता, शरीयत नहीं बदलती, हुक्म नहीं बदलता, चाहे कोई भी नाराज होता हो। फिर उस वक्त ना शौहर की खुशनूदी देखनी है इंसान को, ना माँ बाप की, और ना ही उल्टा सीधा लिखे जाने वाली सास की, दुरुस्त। किसी की भी कोई इताअत मासियत के मोरिद में मकबूल नहीं है, इल्ला ये कि हरजी मोरिद बन जाए, तो फिर वहां पे शरीयत कहती है कि इस हद तक तुम्हें छूट मिल सकती है कि जिससे तुम हरज से बच जाओ और उस शदीद जहमत और मुशक्कत से बच जाओ। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास मासियत अंजाम देने का नहीं है। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.